तो जब हम लोग इंडोनेशिया गए तो हमने सोचा कि इंडोनेशिया में भी ऐसे बहुत रिमोट जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती है। उस दौरान वादा फाउंडेशन के साथ मैंने जुड़ करके हमने जाकर के नूसा तेंगारा तिमूर, एक बहुत रिमोट एरिया है डीप ईस्टर्न इंडोनेशिया में, और वहाँ पे बिल्कुल बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, डेवलपमेंट भी नहीं है, तो उन जगहों पे जाकर के बंकर रॉय, वादा फाउंडेशन और भारत सरकार ने जाकर के 8 सोलर ग्रैंड मदर्स को आइडेंटिफाई किया और उस उनको आइडेंटिफाई करने के बाद इंडिया भेजा तिलोनिया। और पहली बारी वो ज़िंदगी में एक हवाई जहाज़ पे बैठ के गई इंडिया। वहाँ पे पहुँची तो हिंदी भी नहीं बोलती थी और कोई भी भाषा नहीं थी जिससे वो लोग कम्युनिकेट कर पा रही थी, पर साइन लैंग्वेज और कलर कोडेड करिकुलम की वजह से वो सोलर ग्रैंड मदर्स बन गई। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप रही हमारी वादा फाउंडेशन से। वादा फाउंडेशन ने इन 8 ग्रैंड मदर्स की फैमिलीज़ का की देखभाल करी 6 महीने तक। बेयरफुट कॉलेज ने इनको ट्रेनिंग दी और आईटेक प्रोग्राम के अंतर्गत, भारत सरकार के आईटेक प्रोग्राम के अंतर्गत इन लोगों को इंडिया भेजा गया और इनकी ट्रेनिंग का सारा पैसा दिया गया। तो इट वाज अ 3-वे कोऑपरेशन और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। फिर ये जो 8 लेडीज़ वापस आईं तो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही अमेजिंग था। वो वापस गईं, उन्होंने अपने विलेजेस को सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन करा और उनकी तो ज़िंदगी बदल गई। इस वजह से मैं वादा फाउंडेशन से जुड़ी।
हम बात कर रहे हैं वादा फाउंडेशन की, तो ये भी बता दीजिए कि मतलब क्या है उसका।
शुरू में उसका मतलब था वनिता दान हरापन। वनिता मतलब लेडीज एंड विमेन एंड ब्रिजेस ऑफ होप, पर उसको धीरे धीरे चेंज कर दिया गया क्योंकि जब वादा फाउंडेशन ने काम करना शुरू किया कम्युनिटीज़ में लेडीज़ के साथ, तो उनको लगा कि लेडीज़ जो हैं कम्युनिटीज़ से एकदम से जुड़ी हुई हैं, तो कम्युनिटीज़ और लेडीज़ को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो अब वनिता दान हरापन से वर्गा दान हरापन हो गया, मतलब कम्युनिटीज़ एंड ब्रिजेस ऑफ होप। वादा फाउंडेशन का मॉडल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो वो कम्युनिटीज़ के साथ बैठ करके डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा उस कम्युनिटी को ज़रूरत है। तो अगर एजुकेशन में है तो एजुकेशन में सपोर्ट देते हैं, अगर हेल्थ में है तो हेल्थ में सपोर्ट देते हैं, अगर सब जगह सपोर्ट की ज़रूरत है तो सब जगह सपोर्ट देते हैं। पर सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पैसे देते हैं, सपोर्ट का मतलब ये है कि वादा जो है एक कैटलिस्ट बन जाता है उन लोगों को कनेक्शंस देने में, तो जहाँ से उनको पैसा मिल सकता है, जहाँ से उनको ट्रेनिंग मिल सकती है, जहाँ से उनको एजुकेशन मिल सकती है, ये कनेक्शंस वादा करती है।
महिलाओं को एम्पावर करने का इस तरह का प्रयास भारत में भी हो रहा है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से, तो उससे अगर आप तुलना करती हैं, अफ्रीका में भी आपने देखा और इंडोनेशिया में भी देखा, तो क्या अंतर है और क्या समानताएँ हैं?
देखा जाए तो मेरे अनुभव में, क्योंकि मैं यूएन में भी 18 साल काम किया है, मेरे अनुभव में पूरी दुनिया में जो महिलाओं का की समस्याएं हैं वो रीजनली थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं पर ज़्यादातर सामान्य हैं। और जैसे कि इंडोनेशिया में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं, तो उन सोसाइटीज़ में सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं। महिलाओं को एजुकेशन कम मिलती है, उनको घर से बाहर जाकर काम करने के लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं और वो फिर अपने घरों में ही बंद रहती हैं। तो इस सिचुएशन में, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, ये महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक सेम हैं। और इस वजह से जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं ना, कि लेडीज़ को, विमेन को एजुकेशन कम मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं, और ट्रेडिशनल विमेन का रोल है कि वो उनको घर में रह कर के अपने फैमिलीज़ को संभालना चाहिए, ये जो कंसेप्शन है वो अभी तक नहीं चेंज हुआ है। इंडिया के लिए भी, इंडोनेशिया के लिए भी, सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, इथियोपिया, अफ्रीका में भी यही प्रॉब्लम्स हैं। मैं सोचती हूँ कि अकेले जब हम कोशिश करते हैं बदलाव लाने की तो बहुत मुश्किल है, पर अगर मिलकर के बदलाव लाने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे।
और ये कोशिश आप कर रही हैं, आपने भारत को इंडोनेशिया से मिलाया और अब जर्मनी में इन तीनों को एक साथ मिला रहे हैं, तो ये क्या योजनाएं हैं?
तो अब हम लोग आए जर्मनी और मेरी तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है इंडोनेशिया के साथ, क्योंकि मैं हमने वहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। जब मैं यहाँ पर आई तो हमने सोचा कि हम जो कर रहे हैं उसको एक इंटरनेशनल स्टेज पे भी पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। अभी तक वादा जो थी, अपना काम करके बहुत खुश थी कि हम कम्युनिटीज़ के साथ काम करें, उनको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था कि पब्लिसिटी मिले या कोई हमारे बारे में चर्चा करे या बहुत ज़्यादा लोग हमारे बारे में जाने। पर मेरा जो इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं 18 साल यूएन में रह चुकी हूँ, तो मैंने सोचा, और मैं आईएएस में भी थी उससे पहले, तो मेरा जो था कि थोड़ा सा हमें अपने बारे में चर्चा करनी ज़रूर चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ने यूएन से अक्रेडिटेशन ले ली और अब हम यूएन में एग्रेडिटेड हैं विद इकोसॉक। तो ये एक बहुत बड़ा पहला कदम था। तो अब दूसरा ये कदम था कि जर्मनी जो है यूरोप में सबसे पावरफुल देश है इकोनॉमिकली, तो इस देश में हम लोकेटेड हैं, यहाँ पे लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो इस वजह से हम 8 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, शार्लोटनबर्ग पैलेस है यहाँ पर, वहाँ पे जहाँ पे हम काफ़ी सारे सीनियर जर्मन्स को हर कम्युनिटी, हर वॉक ऑफ लाइफ से, जैसे पॉलिटिशियंस, बिजनेस लोग, सोशलाइट्स, डिप्लोमेट्स, सबको बुला रहे हैं वादा फाउंडेशन के बारे में चर्चा करने के लिए। पर साथ साथ आप तो जानते ही हैं अक्टूबर में दिवाली भी है, तो हम दिवाली का भी सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि उसी वक्त बर्लिन में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी होता है, तो उससे हम कोइंसाइड कर रहे हैं और सेलिब्रेशन भी होगा। ऑफ कोर्स हम इंडिया के कल्चर को हाईलाइट करेंगे, इंडोनेशिया के कल्चर को हाईलाइट करेंगे, और जर्मनी में हम हैं तो जर्मन कल्चर को भी हाईलाइट करेंगे।
नीरू जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
थैंक यू जी।